کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. درود و سلام نازل ہو سید المرسلین، شفیع المذنبین، گنبد خضرا کے مکین، احمد مجتبی، ولی کون و مکان، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. بحر عالم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، بحر عالم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، انسانیت کو عرش کا زینہ نہیں ملا. سارے جہاں سے ڈھونڈ کے لوٹ آئی ہے نظر، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا. معزز حاضرین، میں شکر گزار ہوں ہمارے امام صاحب مفتی سراج صاحب دامت برکاتہم کا اور اس مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داران کا اور آپ حضرات کا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹھنے کو، میرے کہنے کو قبول فرمائے. آمین. حضرت والد محترم نور اللہ مرقدہ بارہا آپ سے روبرو ہوا کرتے تھے اور ان کے مواعظ حسنہ سے آپ محظوظ ہوا کرتے تھے. آج وہ اللہ کی جوار رحمت میں ہیں. حضرت والد محترم رحمہ اللہ نے اس عاجز کو جس نہج اور مشن کے تحت تیار کر کے چھوڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس عاجز سے بھی کام لیتا رہے. میرے بھائیوں، مجھے آپ کے انگلینڈ کے پارلیمنٹ ہاؤس آف لارڈ میں 4 مئی کو دعوت دی گئی اور علم بردار انسانیت ہیومینیٹیرین آف دا ایئر اوارڈ اس اعزاز سے نوازا گیا. اس اعزاز کا مقصد کیا ہے؟ اس اعزاز کا مقصد یہ ہے کہ جو پیغام سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو دیا ہے، دنیا کے کسی رشی نے، کسی منی نے، کسی پروفیٹ نے، کسی میسنجر نے، کسی وخشور نے، کسی تیرتھنکر نے انسانیت کا اتنا بڑا رول ادا نہیں کیا جتنا بڑا رول سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ جب تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے قبل دنیا کی تاریخ نے آپ کو سجایا سنوارا، آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف کرایا. حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کا انٹروڈکشن شروع ہوا اور حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ، حضرت اسماعیل کی نسل حضرت عبداللہ تک آپ کا انٹروڈکشن تعارف پہنچا. یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں ہم اور آپ اس دنیا کے باعظمت انسان کی امت میں ہیں جسے سب سے بہترین امت بتایا گیا، سب سے افضل امت بتایا گیا. اور اس نبی برحق نے 2 مینیفیسٹو، 2 نہج، 2 مشن پر سب سے زیادہ کام کیا. تاریخ کے اوراق کو آپ پڑھیں تو 2 مینیفیسٹو سب سے زیادہ آپ کے خاص طور پر رہے. پہلا مینیفیسٹو، پہلا مشن وحدت الہ کا، کہ اللہ کو ایک مانے، اپنے مسائل کا حل اللہ سے چاہیں. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں, اپنے مسائل, اپنی زندگی کی برکت, حالات کی درستگی اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگیں, اللہ کی اطاعت میں جڑ جائیں. یہ پیغام وحدت الہ کا اس نبی برحق نے دیا. اور دوسرا پیغام جو دیا وہ ہے وحدت انسانیت. قرآن نے کہا کان الناس امتا واحدا, کہ اس امت کو واحد امت بنایا گیا, امت واحدہ بنایا گیا. میرا جو مشن ہے وحدت الہ کے ساتھ دنیا کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے پیغام سے جوڑ کر, یہ جو دوسرا مینیفیسٹو ہے وحدت انسانیت کا, یہ میرا خاص مشن ہے. اور اس کے بنا انسانیت کی فلاح اور ترقی نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں, آپ انگلینڈ کی زمین پر رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے والے ہیں, اور جو شعار, جو طریقہ کار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, آپ خود کہتے ہیں کہ انگریزوں نے اپنا لیا اور ہم اس سے مبرہ ہو گئے, الگ ہو گئے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس امت واحدہ پر زوال ہے, اس امت واحدہ پر زوال ہے. اسی بات کو سمجھانا ہے میرے بھائیوں. وہ نبی برحق اتنے بڑے نبی کہ دنیا کی تاریخ نے آپ کو احتراماً اپنی کتابوں میں جگہ دی. میں آپ کو اسلام کی کتابوں سے, اسلامی تاریخ سے روشناس کراؤں تو آپ علماء کی زبان سے سنتے رہتے ہیں, لیکن اگر میں, جیسا کہ ہمارے حضرت امام صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ کبھی کبھی سنسکرت کے شلوک بھی ادا کر دیا کرتے تھے, اگر میں اس تاریخ سے روشناس آپ کو کرا دوں تو یقیناً آپ کے لیے تعجب کی بات ہوگی. آپ نے حضرت والد محترم نور اللہ مرقدہ کی زبان سے سنا ہوگا, اور میں بھی عرض کرتا ہوں. ہمارے پیارے ہندو بھائیوں کے ہاں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے وید, ارتھ وید, سام وید, رگ وید, یجر وید. ان چاروں ویدوں کے مجموعے کو چتر وید کہا جاتا ہے. قربان جائیے اس دنیا کے بازمت انسان پر کہ ان چاروں ویدوں میں نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک انٹروڈکشن 31 جگہوں پر کرایا گیا. دلیل کا موقع نہیں, لیکن ایک دلیل, مختصر سی دلیل آپ سے عرض کر دوں. ارتھ وید میں رشی کہتے ہیں ادمو جنا اپشرت نرا شنشا ششتیم شاشرا نوتیم چکورم. رشی کہتے ہیں کہ میں اس دنیا کے سب سے بڑے باعظمت انسان کا نام لینے جا رہا ہوں, اس لیے اے لوگوں ان کا نام ادب کے سانچے میں ڈھل کر سنو. اور ان کا نام ہوگا نراشنشا. نراشنشا کے معنی ہے, میننگ ہے, ارتھ ہے تعریف کے قابل انسان. یہ دو لفظ ہیں, نر یعنی انسان, اور دوسرا لفظ ہے شنشا یعنی تعریف. اب دونوں کو ملائے تو نرشتا شو آشن. یہ ہندی کا, جیسے ہمارے قرآن کا تجوید کا قاعدہ ہوتا ہے, ایسے ہندی کا, سنسکرت کا قاعدہ ہے نرشتا شو آشن یعنی تعریف کے قابل انسان. دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں, سارے مذہبوں کو پڑھ لیں, ہر مذہب کی کتاب آپ کھنگال لیں, کسی بھی رشی, منی, प्रोफेट मैसेंजर उक्षूर तीर्थंकर के नाम के माने तारीफ के काबिल इंसान मिलते ही नहीं। अरबी की किताब है जिसका नाम है कामिल इब्ने असीर, उसमें लिखा है कि वह नबी बरहक आखिरी तौर पर खातिमुन नबीयीन बनकर आएंगे और उनका नाम होगा मोहम्मद यानी तारीफ के काबिल इंसान। वजाहत कर दी गई। अब ऋषि ने आगे कहा, षष्ठियम सहस्रा नवतियम चकोरम। ऋषि कहते हैं कि आप जब अल्लाह के दीन का ऐलान फरमाएंगे मक्का की सरजमीन पर तो अहले कुरैश आपके दुश्मन हो जाएंगे और उस वक्त अल्लाह आपको यह हुक्म फरमाएगा कि आप मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करें और मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हो जाएं। तो ऋषि ने कहा षष्टियम सहस्रा नवतियम कि जब अल्लाह आपको हिजरत का हुक्म फरमाएगा और आप हजरत अबू बकर के साथ हिजरत करेंगे तो अहले कुरैश आपको चारों तरफ से घेर लेंगे और जब घेर लेंगे तो अहले कुरैश की कुल तादाद 60,090 होगी। षष्टियम सहस्रा नवतियम, घेरने वालों की तादाद 60,090 होगी। दुनिया की तारीख आप पढ़ें, सारे मजाहिब को पढ़ें, किसी भी ऋषि मुनि को 60,090 दुश्मनों ने नहीं घेरा, मगर कामिल इब्ने असीर में लिखा है कि जब आपने मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब हिजरत का सफर शुरू किया तो अहले कुरैश ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और घेरने वालों की तादाद 60,090 थी। अल्लाहु अकबर। अब ऋषि ने एक बात कही, चकोरम, क्या आप हिजरत करेंगे, आपके हिजरत का मकसद क्या होगा, आप हिजरत क्यों करेंगे, हिजरत का मकसद क्या होगा। तो ऋषि ने बताया कि आपकी हिजरत का मकसद होगा पीसफुल एक्टिविज्म बर्पा करना, दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देना, यह आपकी हिजरत का मकसद है। और देखें आप तारीख, जब प्यारे नबी की आमद हुई है तो अरब की तारीख आप पढ़ें तो अरब की संगलाक वादियों के अंदर जहालत बिजली की तरह दौड़ रही थी, इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ था, मां बहनों की इज्जत आबरू महफूज नहीं थी, शराब आम, जिना आम, औरतों को इज्जत नहीं दी जाती थी। ये नबी बरहक सरवरे कोनैन, आपके नबी, मेरे नबी, सारी कायनात के नबी की कुर्बानियों का नतीजा है कि जब आप अरब की संगलाक वादियों में तशरीफ लाए, आपके कदम मुबारक पड़े और आपने अपनी शबनमी फुहार लोगों के जख्मी दिलों पर डाली तो इंसानियत की खेती बहला उठी। मेरे भाइयों, आप उस नबी के आशिक, आपकी शबनमी फुहार ने पीसफुल एक्टिविज्म बर्पा किया, इंसानियत का वो रोल अदा किया कि दुनिया की तारीख में इतना बड़ा रोल किसी प्रोफेट या मैसेंजर ने नहीं अदा किया। रिवायतों में है कि हजरत अदी इब्ने हातिम अल्लाह के रसूल के पास तशरीफ फरमाए, एक देहाती आकर हुजूर से कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम की चांदनी कब फैलेगी, अमनो अमान कब बरपा होगा। प्यारे नबी ने सुना तो आपका चेहरे अनवर सुर्ख हुआ और आपने फरमाया कि ए अदी, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम देखना कि इस्लाम जब अमन व अमान बरपा करेगा, सलामती देगा, तो तुम देखना कि औरतों को इतनी हिफाजत दे दी जाएगी, इतनी हिफाजत दे दी जाएगी कि एक औरत जो निहायत खूबसूरत होगी, कीमती जेवरातों से आरास्ता होगी, न कोई बॉडीगार्ड उसके साथ होगा, न कोई मुहाफिज उसके साथ होगा, और वो हीरा से चलेगी, मक्का पहुंचेगी। 200 किलोमीटर का रास्ता सुनसान जंगलों से, बयाबान रास्तों से वो तने तनहा तय करेगी, मक्के में तवाफ करेगी, और उसी 200 किलोमीटर के रास्ते से वो वापस होगी। ऐ अदी, इस्लाम की रोशनी फैलने के बाद तुम खुद देख लेना, इस्लाम इतना अमन व अमान बरपा कर चुपका होगा कि एक औरत 400 किलोमीटर का रास्ता सुनसान जंगलों से, बयाबान रास्तों से तय करेगी। इस 400 किलोमीटर के रास्ते में कोई ऐसा शख्स न होगा जो उस पर गलत निगाह भी डाल दे। हजरत अदीब ने हातिम फरमाते हैं कि जब इस्लाम की रोशनी फैली तो मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा कि एक औरत हीरा से चली, कीमती जेवरातों से आरास्ता, न कोई बॉडीगार्ड उसके साथ था, न कोई मुहाफिज उसके साथ था, मक्का पहुंची, मक्के में उसने तवाफ किया और उसी 200 किलोमीटर के रास्ते से वापस हुई। इस्लाम की रोशनी फैलने के बाद इस 400 किलोमीटर के रास्ते में कोई ऐसा शख्स न था जो उस पर गलत निगाह डाल। मेरे भाइयों, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोल अदा किया है इंसानियत की फलाह का, आज हम उस पटरी से दूर होते जा रहे हैं। कहने दीजिए मुझे, आज हमने मसलकी इख्तलाफात, मसाजिद के इख्तलाफात, जहनों के तनकीदी इख्तलाफात इतने बर्पा कर दिए हैं कि जिसका नतीजा यह है कि यह उम्मत इज्जत की तलाश कर रही है मगर इज्जत नहीं मिल रही। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि हमारे यहां मजहब काबिल कबूल सिर्फ इस्लाम है, मसलक काबिल कबूल नहीं है। मसलक आपकी जिंदगी का शियार है, शरई हुकुम पर आप किसकी इक्तदा करते हैं, इक्तदा कीजिए, लेकिन उस इख्तलाफ को इनाद ना बनाए। आज हालात ये हैं कि उम्मत के इख्तलाफ ने उम्मत को जवाल के गढ़े में खड़ा कर दिया है। और तलब बात, दुनिया आज भी नबी बरहक को आइडियल मानती है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुसन्निफ है, मुअर्रिख हैं, स्वामी हैं, स्वामी लक्ष्मण दास, उन्होंने बड़ी अजीब बात कही। कहने लगे कि मैंने मोहम्मद अरबी की सीरत लिखी है, आपकी सीरत तैयबा पर काम किया है, जब मैं लिखकर फारिग हुआ तो मेरे दिल ने यह गवाही दी, मेरे दिल ने यह गवाही दी कि मैं आका की गुलामी में आ जाऊं, लेकिन जब मैंने मुसलमानों के जिंदगी के अंदाज को देखा तो मेरे दिल ने गवाही दी कि तू वहां से बेहतर नहीं है। मेरे भाइयों, ये वक्त आला अखलाक को पेश करने का वक्त है, ये वक्त मोहब्बत के अल्फाज दुनिया को दिखाने का दौर है। हम जिस नहज पर, जिस तरीके पर चल रहे हैं, यकीन जानिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि दुनिया में कौन सा अमल अफजल है? एक सहाबी रसूल ने फरमाया, नमाज। पूछा, तुम्हें मालूम है दुनिया में कौन सा अमल अफजल है? दूसरे सहाबी रसूल ने फरमाया, जकात। फिर पूछा कि तुम्हें मालूम है दुनिया में कौन सा अमल अफजल है? तीसरे सहाबी रसूल ने फरमाया, हज। फिर पूछा कि तुम्हें मालूम है दुनिया में कौन सा अफजल अमल है? एक सहाबी रसूल ने फरमाया रोजा। सहाबी रसूल कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सवाल पूछ रहे हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल दुनिया के अफजल अमल में नमाज और रोजा हज जकात मैं हमने बयान कर दिया, मगर आप बताइए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह के बंदों से प्यार करना। अल्लाह के बंदों से इश्क करना, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना। मेरे भाइयों, ये दीन और इस दीन पर चलना, अल्लाह की इताअत करना और अल्लाह की इताअत के साथ अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना दुनिया व आखिरत की कामयाबी की जमानत है। एक बादशाह, उस बादशाह के दरबार में एक फकीर आता था और वो फकीर आकर एक जुमला कहता, नेकों के साथ नेकी कर बुरों को उसकी बुराई मार डालेगी। बादशाह के दरबार में फकीर रोजाना सुबह हाजिर होता और ये जुमला कहता कि नेकों के साथ नेकी कर बुरों को उसकी बुराई मार डालेगी। बादशाह को ये जुमला बेहद पसंद था। इस जुमले को सुनने के बाद बादशाह उस फकीर को इनाम देता और खुश होता। बादशाह को ये जुमला बहुत पसंद था। फकीर इनाम लेता और चला जाता। रोज का यही मामूल, फकीर हाजिर होता दरवाजे पर दरबार के और कहता, नेकों के साथ नेकी कर बुरों को उसकी बुराई मार डालेगी। बादशाह इनाम दे देता। उस दरबार में बादशाह का एक वजीर था जो इस बात से बेहद जलन रखता था, हसद करता था, उसे गुस्सा आता कि बादशाह रोजाना इसको एक जुमले पर इनाम देता है। अब उसने उस फकीर के खिलाफ साजिश की। एक दिन सुबह वो फकीर बादशाह के दरबार के दरवाजे पर हाजिर हुआ और उसने कहा, नेकों के साथ नेकी कर बुरों को उसकी बुराई मार डालेगी। बादशाह ने उसको इनाम दिया, वो फकीर चला गया। वजीर इंतजार में था। वजीर बादशाह के पास आया और कहने लगा, हुजूर ये रोजाना जुमला दरबार के दरवाजे से कहकर चला जाता है, ये मुझसे कह रहा था कि मैं ये जुमला बादशाह के करीब जाकर नहीं कहता क्योंकि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। उसने पिंच कर दिया। आज उम्मत का हाल लगभग ऐसा ही है। अल्लाह हिफाजत पर पिंच किया। बादशाह ने पूछा इसका सबूत क्या है? तो वजीर ने कहा कि हुजूर कल जब वो आए ये जुमला कहे तो उसको पास बुलाइए और जब वो पास आकर ये जुमला कहेगा तो आप देख लीजिएगा वो अपने मुंह पर हाथ रखकर ये जुमला कहेगा। बादशाह को ताज्जुब हुआ और कहने लगा कि अगर तेरी बात सच हुई तो मैं उसको सजा दूंगा और अगर सच ना निकली तो तुझे सजा दूंगा। यह बात पिंच करके वो वहां से चला, दरबार से निकला और फकीर के घर पहुंच गया और फकीर से जाकर यह कहा कि देखो मैं तुम्हारी दावत करने के लिए आया हूं। फकीर से उसने बात की कि मैं दावत के लिए आया हूं और दावत कबूल करना सुन्नत है और तुम अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हो इसलिए मेरी दावत कबूल कर लो। उस फकीर ने कहा कब आना है? तो इस वजीर ने कहा कि आप कल सुबह दरबार जाने से पहले घर आ जाइए और वहीं से हम नाश्ता करके साथ चलेंगे। उस बेचारे फकीर को क्या पता कि इसने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। उसने दावत कबूल कर ली और वादे के मुताबिक अगले दिन सुबह उस वजीर के घर पहुंच गया। इधर वजीर ने क्या किया कि जो दावत के लिए उसने सालन बनवाया था उस सालन में प्याज और लहसुन की तादाद बढ़ा दी। देखिए साजिश कैसे होती। उसने प्याज और लहसुन की तादाद बढ़ा दी। अब बेचारा फकीर दस्तरखान पर बैठा, सालन उसे पेश किया गया और उसने वो सालन शिकम सेर होकर खाया, पेट भर के खाया। जब खाकर फारिग हुआ और एक डकार आई तो मुंह से बदबू का एहसास हुआ। मुंह से जब बदबू का एहसास हुआ तो उसने सोचा कि मैंने लगता है कि लहसुन और प्याज की कसरत वाला सालन खा लिया है। ये एहसास उसके दिल में, और इसी एहसास के साथ वजीर को लेकर वो दरबार में पहुंच गया। अब जो दरबार के दरवाजे पर वो पहुंचा और बादशाह अपने मसनद पर है और उसने वहीं से ये जुमला कहा, नेकों के साथ नेकी कर बुरों को उसकी बुराई मार डालेगी। बादशाह ने उसको आवाज दी कि यहां आओ, मेरे पास आकर ये जुमला कहो। अब जब बादशाह ने यह हुक्म दिया तो ये घबरा गया कि आज तो मामला उल्टा है, मुंह से बदबू आ रही है और बादशाह के करीब जाकर ये जुमला कहूंगा तो मेरे मुंह की बदबू की वजह से बादशाह को तकलीफ होगी। अब उसने सोचा कि भाई मसला बड़ा पेचीदा है, कैसे जाऊं। ये सोचता सोचता डरता डरता बादशाह के करीब पहुंचा और दिल में ये ख्याल आया कि मुंह पर हाथ रख के ये जुमला कह दूं ताकि बादशाह को तकलीफ ना हो। और उसने अपने मुंह पर हाथ रख के ये जुमला कहा कि नेकों के साथ नेकी कर बुरों को उसकी बुराई मार डाले। उधर उसने पिंच किया हुआ था, बादशाह को यकीन आ गया कि इसको मेरे मुंह की बदबू की वजह से इसने अपने मुंह पर हाथ रखकर यह जुमला कहा है। बादशाह को गुस्सा आया और उसने कागज निकाला, उस पर कुछ लिखा और उस पर्ची को उसने फकीर को दिया और ये कहा कि यह पर्ची ले जाकर फला शहर के गवर्नर को पहुंचा दो। वो पर्ची लेकर दरबार से बाहर निकल गया। आज इनाम नहीं दिया गया। पर्ची लेकर बाहर निकला। इधर वजीर जो देख रहा था उसका गुमान यह था कि जैसे ही बादशाह के सामने ये जुमला कहेगा तो बादशाह इसको सजा देगा, मगर बादशाह ने पर्ची दे दी और बादशाह जब किसी से ज्यादा खुश होता था और उसको कुछ बड़ा इनाम देता था तो किसी गवर्नर के नाम पर्ची दे देता था। यह उस बादशाह का तरीका था। उस वजीर ने सोचा कि साजिश तो कुछ की थी और हासिल कुछ और हुआ। मैंने सोचा था कि मैं इसको फंसा दूंगा, इसको सजा मिलेगी, उल्टा ये गवर्नर के पास पर्ची लेकर जा रहा है। तो उस वजीर ने अब दूसरी साजिश की कि फौरन दरबार से निकला, फकीर के पास पहुंचा और यह कहा कि भाई मैं उसी शहर में जा रहा हूं, यह पर्ची मुझे दे दो। फकीर ने कहा कि बादशाह ने यह पर्ची फला गवर्नर को पहुंचाने का हुक्म दिया है। तो उस वजीर ने कहा कि पर्ची को पहुंचाने का हुक्म दिया है, तुम्हारा जाना कोई जरूरी नहीं है। वजीर के दिल में लालच कि जो इनाम मिलना होगा वो मुझे मिल जाएगा। उस बेचारे फकीर ने वो पर्ची वजीर को थमा दी कि हाँ, गवर्नर तक पर्ची पहुंचानी है तुम ही पहुंचा दो, तुम जा ही रहे हो तो दे देना। वो पर्ची लेकर गवर्नर के पास उस शहर में पहुंचा। अब गवर्नर ने जो पर्ची खोली और उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि पर्ची लाने वाले की गर्दन कलम कर दी जाए। देखिए, जो जैसा करता है वैसा उसको मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। मैंने ये देखा है कि जो हासिदीन होते हैं, जिनके दिल पाक नहीं होते, वो ता जिंदगी इस हसद में अंदर अंदर घुलते रहते हैं और अपनी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद कर देते हैं। और सच्चे मोमिन की अलामत यह है कि वो अपने दिल यानी बातिन को भी पाक रखे और जाहिर को भी पाक रखे। मेरे भाइयों, जब वो पर्ची गवर्नर ने पढ़ी तो जल्लाद को हुक्म दिया कि इसको गिरफ्तार कर लो। अब वो वजीर कहने लगा कि हुजूर, ये पर्ची मुझे नहीं दी गई थी, ये फला फकीर को दी गई थी, मैं तो बस लेकर आया हूं। गवर्नर ने ये कहा, इस पर्ची में लाने वाले का नाम नहीं लिखा, इसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि पर्ची लाने वाले की गर्दन कलम कर दी जाए। कोई भी लाए। बहरकैफ, गवर्नर ने जल्लादों को हुक्म दिया और उसको सजा दे दी गई, उसका खात्मा हो गया। अगले दिन बादशाह दरबार में पहुंचा, अपने मसनद पर बैठा, इत्तफाक से वही फकीर फिर दरवाजे पर हाजिर, और उसने वही जुमला कहा कि नेकों के साथ नेकी कर, बुरों को उसकी बुराई मार डालेगी। बादशाह को ताज्जुब हुआ कि यहां कैसे खड़ा, उसे पास बुलाया, इधर आओ। कहा, भाई तुम्हें मैंने पर्ची दी थी, वो पर्ची कहां है? तो उस फकीर ने कहा कि हुजूर, वो पर्ची आपके वजीर लेकर गए हैं गवर्नर के पास। उन्होंने कहा, पर्ची पहुंचाना असल है, तुम्हारा जाना असल नहीं है, तो मैंने उन्हें दे दी, उन्होंने पहुंचा दी होगी। अब बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, हंसने लगा, कहा कि भाई एक बात बताओ, कल जब तुम मेरे पास आए थे और तुमसे मैंने ये कहा था कि ये जुमला मेरे पास आकर अदा करो, तो तुमने अपने मुंह पर हाथ क्यों रखा था? तो उस फकीर ने कहा कि हुजूर, मैं आपके पास आने के बाद अपने मुंह पर हाथ मैंने इसलिए रखा था कि उस वजीर ने सुबह नाश्ते में तेज लहसुन और तेज प्याज वाला सालन खिला दिया था, जिसकी वजह से मेरे मुंह से बदबू आ रही थी, और मुझे यह एहसास था कि यह जुमला जब मैं आपके करीब आकर कहूंगा तो आपको तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बादशाह ने जब यह सुना तो सारी बात समझ में आ गई, और फिर बादशाह ने कहा कि यह जुमला कहो, फिर उसने वह जुमला दोहराया। आप भी समझें कि नेकों के साथ नेकी कर, बुरों को उसकी बुराई मार डाल। मेरे भाइयों, मुख्तसर सबक है, मैं किसी मौजू पर बात करूं तो मुझे एक एक दो दो घंटे का वक्त चाहिए होता है। हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में दो दो तीन तीन लाख का मजमा होता है, आपको सिर्फ इस शॉर्ट टाइम में, मुख्तसर वक्त में समझाना यह है कि मोहम्मद अरबी का शियार इंसानियत की फलाह है, आला अखलाक है। आप आला अखलाक पेश करें, दुनिया कहेगी कि ये नबी के सच्चे जानशी। आप अपनी जबान से शबनमी फुहार बरसाएं, दुनिया कहेगी कि ये नबी के कौल पर अमल करने वाले हैं। आप अपने अमली जिंदगी को दुनिया को दिखाएं तो दुनिया कहेगी कि ये नबी के अफ़ाल पर अमल करने वाले हैं। आप अच्छे हालात के साथ रहें, दुनिया कहेगी कि ये नबी के अहवाल वाली जिंदगी जीने वाले हैं। आप नबी की जानशीन और दुनिया की बेहतरीन उम्मत आपको बनाया गया। इसलिए मेरे भाइयों, दौर बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, इंसानियत को पामाल करने की कोशिशें हो रही हैं इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहद खुशी है, जब से इंग्लैंड हाजिरी हुई है मैं देख रहा हूं कि इस मगरबी तहजीब के जमाने में दौर में आप अपने दीन की फिक्र अपनी मस्जिदों में अपने घरों में जो उठाए हुए हैं, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेहद खुशी हुई, मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात कि इस मॉडर्न कल्चर में भी आप अपना मस्जिद का मदरसे का निजाम उलमा की मोहब्बत का निजाम संभालें। ये जो बुजुर्ग आपके यहां आते हैं और उनके बयानात से आप मुस्तफीज होते हैं, यकीन जानिए इन बुजुर्गों की आमद की बरकत से नस्लों की हिफाजत का सामान है। हमारे हजरत मुफ्ती सिराज साहब दामत बरकातुहू, इनके भाई हैं हजरत मौलाना मुफ्ती शेख मोहम्मद हनीफ साहब लोहारवी दामत बरकातुहू, उनके शेख हैं हजरत अकदस मौलाना शेख मोहम्मद यूनुस साहब रहिमहुल्लाह, मुहद्दिस कबीर अपने वक्त के इमाम, सबने नाम सुनो। हमारे मदरसे में, जिस मदरसे में इस वक्त मैं जिम्मेदार हूं और बुखारी पढ़ा रहा हूं, उस मदरसे में हजरत शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ आवरी लगातार 22 साल तक हुई और उनके खलीफा मेरे वालिद भी हैं और हजरत शेख हनीफ लोहारवी भी हैं। हजरत शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह ने 80 मरतबा अल्लाह के रसूल की जियारत की और इससे ऊंची बात हजरत शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह ने 3 मरतबा अल्लाह की जियारत की। मेरे भाइयों, इन बुजुर्गों की आमद से दिल की कैफियत बदल जाती है। मौका नहीं है, 10:15 बजे अजान होना है और दुआ भी होनी है, बस एक बात अर्ज कर दूं, जहां से बुजुर्गों का शजरा चला है वो है हजरत हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। इन बुजुर्गों से जुड़ने का फायदा क्या है वो इस वाक्य से समझाता हूं।
चालू रखो, सवाल शुरू करते हैं आराम से।
अच्छा, हजरत हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में उनका एक मुरीद आया, कहने लगा कि हजरत मैंने कई मरतबा अल्लाह के रसूल की जियारत की है मगर मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह की जियारत करूं, अल्लाह का नूर अल्लाह की तजल्ली देखूं। हजरत ने पहले समझाया कि इतनी ऊंची उड़ान मत ले, वो माना नहीं कि हजरत मैं इतने सालों से आपसे जुड़ा हूं आप इतनी सी दुआ नहीं कर सकते। हजरत ने कहा अच्छा एक काम कर, घर चला जा, इशा की नमाज छोड़ देना सो जा, इशा की नमाज छोड़कर सो जाना। अब वो हजरत के पास से जब निकला तो दिल में ख्याल आया कि कैसे बुजुर्ग हैं, फर्ज नमाज छोड़ने को कह रहे, कैसे कर, चले गए घर जाके डरते डरते, फर्ज नमाज की पाबंदी उनकी जिंदगी में थी, फर्ज नमाज अदा कर ली, सुन्नत छोड़ दी, सो गए। कि हजरत ने कहा है तो कम से कम सुन्नत तो छोड़ ही दू, फर्ज अदा कर ली, मौका मिलेगा तहज्जुद में पढ़ लूंगा, ये सोचकर सो गए। जब सोए तो जनाब रसूलुल्लाह की ज़ियारत और जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरी सुन्नत छोड़ दी। अल्लाहू अकबर, सटपटा कर उठे, घबरा गए, भागे हुए हजरत की खिदमत में उसी वक्त पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजे पर दस्तक दे करके कहा कि हजरत हजरत इतना ही कहा था। हजरत ने फरमाया कि बेवकूफ, मैंने तुझे कहा था कि फर्ज छोड़ दे, तूने सुन्नत छोड़ी, अल्लाह के रसूल की जियारत हुई, तू फर्ज छोड़ता अल्लाह की जियारत। बुजुर्ग थे, बुजुर्गों की खिदमत से उनकी आमद की बरकत से अल्लाह दिल की कैफियत को बदल देता है। मेरे भाइयों, वहदत इलाह को आपने खूब अपनाया, वहदत इंसानियत को अपनाया, अपनी जिंदगी का शियार हम ही ने बख्शी है तारीकियों को जिया, खुद एक तजल्ली के मोहताज है। हम ही ने बख्शी है तारीकियों को जिया, खुद एक तजल्ली के मोहताज है। रोशनी देने वाले को कम से कम एक दिया चाहिए अपने घर के। जिंदगी में इस इख्तलाफ से ऊपर इंसानियत की फलाह को सोचो। ताईदी पहलू को अपनाया जाए, ताईदी पहलू, तनकीदी पहलू को ना अपनाया जाए। आज ज्यादातर हमारी महफिलें तनकीदी पहलू पर मबनी हैं, और ये तनकीदी पहलू उम्मत के जवाल का सबब बना। आप जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, आपने फरमाया इन मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा व अहसनुकुम अख़लाक़ा। कि कल कयामत में मैदान महशर में मेरे करीब सबसे ज्यादा वो शख्स बैठेगा, वो शख्स होगा जिसका हुस्न अखलाक अच्छा होगा। अल्लाह, अब आप सब बैठे हैं, कौन ऐसा है जो नबी की कुर्बत कल नहीं चाहेगा? सबको नबी की कुर्बत चाहिए, और नबी की कुर्बत के लिए जो कंडीशन है वो हुस्न अखलाक है, वो हुस्न अखलाक है। मेरे भाइयों, वो नबी जिसको दुनिया ने सजा कर पेश किया है। मैंने अभी तारीफ की दलीलें सही अंदाज में आपके सामने नहीं खोली है, वो तो हमारे हजरत मुफ्ती सिराज साहब दामत बरकातहुम ने अपनी जबान मुबारक से ये बात अर्ज कर दी, तो मैंने आपके सामने बात कह दी। उस नबी बरहक को सजाया गया अल्लोपनिषद में, कठोपनिषद में, रामायण में, रामचरितमानस में, तौरात में, इंजील में, आपकी तारीख सजाई गई, संवारी गई, आपके जुहूर से कबल आपका इंट्रोडक्शन तारुफ कराया गया। एक हमारे यहां बहुत बड़े कवि गुजरे हैं जिनका नाम है तुलसीदास, बहुत से लोग जानते होंगे तुलसीदास। तुलसीदास जी की एक बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस के खंड 12 अध्याय 2 में तुलसीदास जी ने एक पेशगोई की है और कहा है, यहां न पक्षपात कुछ राखू हूं, वेद पुराण संत मत भाकू हूं, संवत विक्रम की दो अंगा, महान कोक नस चतुर पतंगा, सुरन चतुर सुदर्शन चारी, तिनको वंश सेवति भारी, तक तक सुदर माधि को था, बिना मोहम्मद पार न होए, तुलसी वचन सत्य सच सोए, बिना मोहम्मद पार न होए। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस के खंड 12 अध्याय 2 में कि मैं यहां कोई पक्षपात नहीं करूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूंगा, जो बात सही है, सच्ची है, वही कहूंगा। और सच्ची बात यह है, सच बात यह है कि जहालत के अंधेरों में अरब की जमीन पर एक नबी आएंगे, और वो नबी अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करेंगे, और उनके चार खलीफा होंगे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। उन चार खुलफा की मदद से आपकी बात पूरी दुनिया पर जाहिर हो जाएगी, और जब आपकी बात जाहिर होगी तो बिना मोहम्मद की बात को माने हुए, मोहम्मद के सच्चे कलाम को माने हुए कामयाबी नहीं मिलेगी। तुलसीदास जो कह रहा है वो सब कुछ सच है। मेरे भाइयों, तारीख मौजूद है। इसलिए आपसे یہ گزارش ہے اللہ کی توفیق پر یہ عاجز حاضر ہوا ہے، پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی، مفصل بات ہوگی، فی الوقت یہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، اپنے دلوں کو اللہ کے بندوں سے جوڑ لیجیے۔ یہ ہماری زندگی کا اگر شعار بن جائے تو دنیا آج بھی آپ کے طریقے کو محمد عربی کی شکل میں دیکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں میں نے عرض کی ہے اور جو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ کچھ قطرے ہی بہت ہے اگر اثر کرے، جو باتیں عرض کر دی وہ اثر کر جائے تو میرا کہنا بھی کامیاب، آپ کا سننا بھی کامیاب۔ ورنہ اتنے علماء آتے ہیں، ان کی تقریریں آپ سنتے ہیں، سنتے سنتے سن نہ پڑیے، عمل کرنے والے بنیے، اور عمل کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے والی زندگی کو اپنا کر۔ اللہ تعالی آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی اس مسجد کے تمام نمازیوں کو قبول فرمائے، اللہ اس مسجد کے ذمہ داروں کو، اراکین کو قبول فرمائے، ہمارے حضرت امام صاحب کو قبول فرمائے، اور میری آواز اپنے گھروں میں مائیں اور بہنیں سن رہی ہوں گی، اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ دعا کر لیں، 3 منٹ باقی ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما لے، اے اللہ یہاں موجود تمام بزرگوں کو، نوجوانوں کو قبول فرما لے، ہمارے حضرت امام صاحب کو قبول فرما لے، یہاں نمازیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ یا اکرم الاکرمین، آپ نے اپنے گھر پر بلایا ہے، کوئی اپنے گھر پر بلا کر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اے اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے جائز حاجات کا تکفل فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ جو گناہ ہم نے چھپ چھپا کر کیا، اے اللہ گھر والوں سے چھپا کر کیا، دنیا والوں سے چھپا کر کیا، مگر آپ سے ہمارا کوئی فعل نہ چھپ سکا، اے اللہ ہم پکی سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، اے اللہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، اے اللہ ہمارا یہ کامل یقین ہے، آپ کے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں، اے اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، اے اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اے بادشاہ، اے اللہ یہ محبوب کی یتیم امت ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، عزت کی تلاش کر رہی ہے، ذلت اس پر لاد دی گئی ہے، اے اللہ، اے اللہ اپنے محبوب کی یتیم امت کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ عزت والی زندگی عطا کر دے، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے ذہنوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو پاک کر دے، اے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا بنا دے، ہمارے اختلافات کو ختم کر دے، اے اللہ ہمیں نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں نبی سے عشق کرنے والا بنا دے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے، یا رب العالمین، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے, جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے سبیل پیدا فرما دے, جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو باعزت بری فرما دے. یا رب العالمین آپ دینا چاہیں دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی, آپ نہ دینا چاہیں دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی. اے ہمارے رب اپنے محبوب کی یتیم امت کی لاج رکھ لے. اگر آپ نے ہماری دعائیں قبول نہ کی, دنیا کہے گی کہ اپنے رب سے مانگنے جاتے ہو, وہی تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہے. اے اللہ یا رب العالمین اس مسجد میں بیٹھ کر آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ نے ہاتھ اٹھوا لیا ہے. اے اللہ ہم بھکاری ہیں آپ داتا ہیں, ہم حق نہیں مانگتے آپ کا فضل مانتے ہیں, ہم سب کی دعائیں قبول فرما. یا موجود ساتھیوں کو اے اللہ کیا چاہیے آپ کو خوب معلوم ہے, آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں. اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما, اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما, اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما. پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی دعا قبول و منظور فرما, جو مانگ لیا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو رہ گیا ہو بھی عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.